نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير دین و دنیا قرآن پاک کی روشنی میں اس میں ہم 20 پارے کو کنٹینیو کریں گے ہم اس پارے کو دعا کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ دعا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک خوبصورت رشتہ ہے مانگتا کس سے ہے انسان آپ لوگ پورا کریں میرا جملہ اور دنیا میں انسان کس سے مانگتا ہے جس سے تعلق ہو اور جس سے رشتہ ہو اللہ سے بھی وہی مانگے گا جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس ہوگا جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آج کل میرے ان سے تعلقات خراب ہیں آپ پوچھ لیجئے مجھے نہیں پوچھنا ہوتا دنیا میں ایسا جملہ جس طرح ہمارے انسانوں سے تعلقات جب بگڑے ہوں اور ہم اس سے کچھ مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں نا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلقات کا بگاڑ ہے یہ کہ ہم اس سے خود نہیں مانگتے دوسروں کو کہتے تم مانگ دو مجھے شرم آتی ہے اور کیا ہوتا ہے رشتہ بچی ہے تو وہ باپ سے مانگے گی بھائی سے مانگے گی شادی کے بعد شوہر سے مانگے گی بڑھاپے میں اولاد سے بیٹے سے مانگ لے گی جہاں رشتہ نہیں ہوتا وہاں مان نہیں ہوتا تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک انسان کا معاملہ خوبصورتی کا ہوتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کو کہہ دے کہنا ہو تو لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں خود منوا لوں گی مجھے پتہ ہے کیسے لیتے ہیں ہم خواتین عموماً اپنے ہسبینڈس کی ٹون جانتی ہیں اسی طرح ہر رشتے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کس نے کب کہاں کس وقت دینا ہے کس وقت نہیں دینا اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے آپ یہاں بیٹھ کے خود سے پوچھیں کیا آپ کو اللہ سے مانگنا آتا ہے دیکھیے ایک جملہ بڑے شعور سے بولوں گی آپ کی بک میں نہیں ہے آپ لکھنا چاہیں تو لکھیں آپ کسی سے کچھ مانگیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس ہے وہ چیز اور پھر بھی وہ نہ دے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اچھا کہ برا برا سوچیں گے نا بس آپ ہی کے بھائی بہن آپ سے کہتے ہیں ذرا 1 لاکھ روپے ادھار دینا چلے ویسے نہیں ادھار ہی مانگ لیں اور آپ کو یہ پتا کہ ان کے سے 1 نہیں 5 ہے لیکن وہ معذرت کریں بس کیا کروں حالات تنگ ہے ہاتھ تنگ ہے بس یہ وہ تو آپ کہیں گے ہاں چھوڑو مانگا تھا دیے میں نہیں مانگوں گی آئندہ ایسے ہی ہے بس آپ کسی سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو نہ دے آپ کے دل میں اس شخص کے بارے میں برا خیال آتا ہے آپ کو اس سے سروکار نہیں کہ آپ کو کہیں اور سے مل جائے گا آپ کو اپنی انسلٹ فیل ہوگی اور دوسری بات ہے کہ اس بندے کے بارے میں جو آپ کا ایک امیج بنا ہوا تھا وہ لوز ہو جائے گا بالکل اسی طرح یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ بندہ بندے سے مانگے اور انسان یہ سوچ کے ہی دے دے کہ خام خواہ پھر اس کو برا لگے گا بہن ہے اب اس نے مانگا چلو میں دے ہی دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ سے مانگے اور اللہ آپ کو نہ دے کیا کل قیامت کے دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرمندہ ہونا ہے آپ کے سامنے ہاں میری بندی فلاں موقع پہ تو نے مانگا تھا بس میں نے نہیں دیا ایک تو یہ کہ اللہ کیا تنگی رہی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب اس کا چھوٹا بڑا جو بھی دنیا میں آپ کو دکھتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا آپ کی نگاہوں میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا کیوں نہیں ہے تو اس کا ایک جواب لکھ لیجئے کہ جو آج تک مانگا اور نہیں ملا سمجھ لیجئے کہ مانگا ہی نہیں ہے مانگ میں کوئی کمی تھی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ رستے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں اسی لیے اب ہم کچھ آداب پڑھیں گے بک کا پیج نمبر 329 آئیے اس سے ذرا سے نوٹس لیتے ہیں ہم دیکھیں گے دعا کے آداب اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ادب ہی تو سیکھا ہے ہم نے قرآن میں آداب ہی تو سیکھ رہے ہیں یہ وہ آداب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی پہلی بات اب 1, 2, 3 لکھے کیا کیا آداب یعنی مینرز آف سیکنگ دعاز اللہ سے کچھ مانگنے کے مینرز کیا ہیں پہلی بات یہ کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرے دیکھیے دنیا میں بھی آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کسی سے کچھ کام ہو نا اور آپ نے اسی مقصد کے لیے فون بھی کیا ہو تو ایک دم ہیلو کہہ کر یہ نہیں کہتے وہ میرا کام کر دے کیا حال ہے کیسی ہیں آپ اور بچوں کو دیکھا کرے جب ماؤں سے یا باپوں سے کچھ لینا ہوتا ہے تو کتنے لاڈ کرتے ہیں और जब बीवियों ने शोहरों से कुछ निकलवाना हो तो फिर चाय बनाऊं, पकोड़े बना दूं साथ। वो कहेंगे बात करो क्या चाहिए, होता है ऐसा? हमेशा हम पहले अगले बंदे के साथ ताल्लुक अच्छा रखते। कैसे हैं आप, ये तरीका कहाँ सीखा आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले अल्लाह की हमदो सना कीजिए। दूसरी चीज़ बहुत अहम है और वो ये है कि आसानी और परेशानी हर दो हालतों में दुआ करें। यानी ये नहीं कि सिर्फ मुश्किल पड़ी तो अल्लाह से मांगने लग जाएं और खुशियों में अल्लाह को भूल जाएं। और याद रखिए कि जो आसानियों के दिनों में अल्लाह को याद रखता है ना, मुश्किल हालात में अल्लाह उसकी जल्दी सुनता है। हदीस का खुलासा है कि जो बंदा आसानियों के अंदर अल्लाह को पुकारता है, गमों और तकलीफ़ों में अल्लाह ताला इसकी जल्दी दुआ कबूल कर लेता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब इनकी आवाज़ अर्श पर गई थी तो फरिश्तों ने कहा, हमने तो ये आवाज़ सुनी हुई है। अच्छा, ये वो यूनुस हैं जो अच्छे दिनों में भी अल्लाह को पुकारते थे? आप अपने ऊपर लेकर सोचें, क्या जब मेरी ज़िंदगी में खुशियों वाले दिन होते हैं, रिलैक्सेशंस वाले दिन होते हैं, तो उन दिनों में अल्लाह को याद रखती हूँ? इंशाल्लाह अच्छे दिनों में अल्लाह को पुकारेंगे तो बुरे दिनों में भी अल्लाह याद रखेंगे आपको। फिर इसके अलावा अपने तीसरा अगला अदब लिखिए, अपने माल और घर वालों के लिए बददुआ ना करें। बस दफ़ा हम जल्दबाजी में आकर अपने बच्चों और अहल और माल के लिए बददुआ कर लेते हैं, ऐसी दुआएं भी कबूल नहीं होती। ये अल्लाह का एहसान है। दुआ करते वक्त नेक्स्ट, मैं नंबर नहीं बोलूँगी, आप खुद नंबर्स डालेंगे। दुआ करते वक्त आजजी हो, पस्त आवाज़ रखें, अल्लाह के नामों का वसीला देकर दुआ मांगें। अपने अच्छे आमाल का वसीला दे सकते हैं, फिर इसके बाद किसी नेक शख्स से दुआएं ली जा सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ खाना खिलाकर दुआएं करवाई जाती हैं, सुने कभी आपने? मुझसे पूछिए। बस लोग ये इंतज़ार करते हैं, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करती, ना मुझे हक है इसका, लेकिन बस लोग ये बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि आप हमारे घर आएं, खाना खाएं, चले आप थोड़ी सी दुआ कर दें। अच्छा जी, आपने दुआ कराने के लिए खाना खिलाया? ऐसा ना करें। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं, जैसे आप होटल से उठे तो वो आपके सामने बिल पेश कर दें। किसी को भी, चाहे आप कितना नेक क्यों नहीं समझते, ये सोच के ना खिलाएं पिलाएं कि ये दुआएं देगा। आप एक नेकी का अमल रख के नेक को भी खिलाएं, बद को खिलाएं, आपको क्या पता कौन कैसा है? मैं कैसे ज़ाहिर पे आपके क्यास करूं और आप मेरे ज़ाहिर पे कैसे क्यास करें? क्योंकि वरना नुकसान होगा। आपने उसको बड़ा नेक समझा, असल में वो नेक ही नहीं था। आपने कहा जो ये दुआ करेगा बस वो तो मेरी गई कबूलियत के आखिरी दर्जे पे हुई कोई ना, तो फिर खाम खा खाना खिलाया हुआ ज़ाया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सूरह दाहर में आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों की बात क्या कहते हैं कि हम उनको खाना खिलाते हैं, युत एमोनत ताम अला हुब्बिही, यानी वो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं। ला नुरीदु, हम चाहते ही कुछ नहीं, ना उससे कोई शुकूर, कोई कदरदानी, कोई दुआएं, कुछ भी नहीं चाहते, तो बेज़रर होकर खिलाएं। और याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा खाना ना खाएं मगर मुत्तकी, अच्छे लोग खाएंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। उनको तो हदीस में वैसे ही दुआ सिखा दी गई है, और वैसे भी वो शुक्रगुजार अगर होंगे तो वो आपके एक एक लुकमे के बदले आपको दुआएं देंगे। अल्लाह मबारक लहुम फ़ीमा रज़क़ता हूँ वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, इतनी खूबसूरत दुआ है जो नबी सल्लम ने सिखाई कि जब भी कोई किसी के घर से खाए या कोई होस्ट होस्ट का यानी खाना भेजे तो ये दुआ दीजिए, आप ही दिया करें। शोहरों को अपनी बीवियों को ये दुआ देनी चाहिए खाना खाने के बाद, बच्चों को ये दुआ अपनी माओ को देनी चाहिए। आपकी मासी आपकी कुक मेड खाना बनाती है, आपकी बेटी आपकी बहू खाना बनाती है, आपके आगे ट्रे में रखे, आप उसको दुआ दीजिए कि अल्लाह तुझे बरकत दे, तेरे गुनाह माफ़ कर दे, तेरे पे रहम करे, अगली दफ़ा साथ हलवा भी बना के भेज देगी, इतनी खुश होगी। क्योंकि वला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, कदरदान लोग जो होते हैं ना वो और खाते हैं, उनको और मिलता है। और अगर हम कहते हैं नमक तेज़ नहीं हो गया आज, मीठा कुछ ज़्यादा ही डाल दिया तुमने, चलो शुक्र है, तो फिर उसका दिल बुझ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा कोई खाना पका कर रहा है तुम्हारा मुलाजिम तो एक लुकमा उसके मुंह में दे दो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मोहब्बत देने और लेने की है। दुआ अगर कोई खुद कर दे तो ठीक है, इसको भी हाईलाइट करें। हमारा एक दुआ कल्चर बहुत डिस्टॉर्टेड है। इंशाल्लाह कोई एक लॉन्ग नशिस्त लेकर हम सिर्फ दुआ के मौजू पे बात कभी फिर करेंगे। कई दफ़ा की हुई है लेकिन हमेशा ही इस मौजू पे बात की ज़रूरत होती है। फिर अगला अदब लिखिए। फिर इसी तरह पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, दुआ को 3 दफ़ा दोहराना चाहिए, इससे अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। इसके अलावा दुआ मांगते वक्त अपना मुंह क़िबले की तरफ कीजिए, मतलब इसे आप कह लीजिए कि दुआ की कबूलियत की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हर जगह ये मुमकिन नहीं होता लेकिन मुमकिन हो अगर तो ज़रूर कीजिए। और फिर मुमकिन हो तो दुआ से पहले वुज़ू कर लीजिए। फिर दुआ के लिए हाथों को उठाना ये आजज़ी का एक इजहार होता है। और फिर दुआ में अल्लाह के खौफ से रोना, अल्लाह ताला से मुख्ताजी का इजहार करना। हज़रत मूसा की दुआ याद है, इन्नी लिमा अनज़लत इलैय मिन खैरिन फ़क़ीर। मदीन में जब गए न घर न बार, कत्ल का इल्ज़ाम, बेघर, वीज़ा कोई नहीं मदीन का, और जॉब कोई नहीं, खाने को कुछ नहीं, और कह रहे अल्लाह जो देखा मुझे हर चीज़ की ही ज़रूरत है। ऐसी बेबसी का इजहार कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए। फिर इसी तरह से जब दूसरों के लिए दुआ करें तो पहले अपने लिए भी करें। यह बहुत अहम नुक्ता है। हदीस का ख़ुलासा बता देती हूँ, जो अपने लिए दुआ नहीं करता उसको दूसरों की दुआ भी नहीं लग। तकब्बुर है ना, मैं नहीं मांगती। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना, ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं, मैं नहीं किसी से मांगती, मुझे अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। और दिल में गुस्सा होता है ना बहुओं के, तो कहती मैं खुद ही उठ के पी लूँगी, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ का पानी। तकब्बुर है ये बड़ा। और जब वो बिस्तर से नहीं उठ सकेंगी तो फिर कहेंगी कि अब बहू ला के ही नहीं देती, क्योंकि जवानी में आपने उसको खूब सताया। आप में जब अकड़ थी तो आप उसकी चीज़ों में नक्स निकालती थी, अब वो नौकर के हाथ भेज देती है तो सब्र कीजिए। बाज़ दफ़ा हमारी जवानी की बद अखलाकियाँ और बेज़ुबानियाँ बुढ़ापे में हमें तनख्वाह कर देती हैं। तो लिहाजा जब भी कभी कोई ऐसा मामला हो, कोई आपके लिए कुछ करे, तो आप उसको दुआ दीजिए और अपने लिए दुआ पहले कीजिए। और इसी तरह एक और चीज़ है कि जब आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो फरिश्ता दुआ करेगा आपके लिए। फिर अपने साथ अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। ये पीछे भी बताया था कि रब्बिरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दैट इज़ द शॉर्टकट ऑफ एक्सेप्टिंग द दुआस। आप दिन में 100 दफ़ा दुआ करें और अपने माँ बाप के नाम पे कर लेना, तो आपके खाते पे बिल नहीं आएगा, उनके आएगा, और आपकी तरफ से उनके लिए एक सिला रहमी का अजर भी बन जाएगा। और पता नहीं आपकी रब्बिरहम हुमा से उनका कौन सा दर्द ठीक हो जाए, कौन सी तकलीफ़ दूर हो जाए। पता नहीं आपका ही कोई दुख आपके माँ बाप को पहुँचने वाला था लेकिन आपने उनके लिए दुआ करके उनको उस दुख से दूर किया, तो किसको फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा हुआ, अल्लाह ने आपका वो दुख दूर कर दिया। जो बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला इसको बिन मांगे अता करता है। इसके बाद फिर आम मोमिनीन के लिए दुआएं करना। कितने अदब हो गए हैं, गिने किसी ने जी? अल्हम्दुलिल्लाह 19 अदब हो गए हैं। चलिए दुआ करें अपने लिए कोई अच्छी सी, चंद सेकंड की खामोशी, कोई दुआ कर लें जो अटकी भी है इधर। इल्म की महफिल में भी दुआएं कबूल होती हैं। 10वां अदब भी लिख लें ताकि 20 पूरे हो जाएं। अच्छा काम करें कोई, उसके बाद दुआ करें। ज़करिया अलैहिस्सलाम की मिसाल है, हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बहु। जिस जगह नेकियाँ होती हैं ना वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। तो इल्म की महफिलों में चुपके चुपके अपने लिए दुआएं मांगा करें। चलिए कुछ चीज़ें कबूलियत के औकात, यानी किन औकात में दुआएं कबूल होती हैं। सबसे पहली चीज़ शब कदर, इसका ज़रूर इख्तमाम करना चाहिए। ये रातें बहुत कीमती होती हैं, सोकर और खाकर नहीं गुजारनी चाहिए। अब तो जब आएंगी तभी होंगी, लेकिन बहरहाल ये दुआओं की कबूलियत का लम्हा होता। फिर इसके बाद ये कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, रात के तीसरे पहर दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर पुकार लगाते हैं कि है कोई जो बख्शिश मांगे, रिस्क मांगे, बीमारियों से सेहत मांगे। फिर इसी तरह फ़र्ज नमाज की अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है हमारे पास इधर ये मौका, जो ही अजान ख़त्म होना चुपके से दुआ मांग लिया करें। फिर 7वीं चीज़ क्या है, बारिश उतरते वक्त दुआ कबूल होती है। दुआ करें बारिश हो और हम उसमें खड़े होकर दुआएं मांगें। फिर इसी तरह अल्लाह की राह में जिहाद या फिर इल्म हासिल करने के लिए निकलें تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں ہے کہ ہر رات ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طرح جمعے کے دن میں خاص مختصر گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نیک نیتی کے ساتھ زم زم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. زم زم کا پانی گھر میں رکھ لیں اس لیے کہ پانی پئیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوں. کس کس کے گھر میں زم زم ہے سنبھالا ہوا؟ چھوٹی سی بوٹل میں ڈال کے نہ اپنے پاس کہیں رکھ لے. جب کوئی دعا کرنی ہے ایک چوس بس ایک قطرہ لے لے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے. ایک صحابی تھے تو وہ زمزم پیتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ, کیونکہ حدیث ہے نا کہ الماء زمزم لما شرب له, زمزم اسی چیز کے لیے جس کے لیے پیا جائے. تو ایک صحابی کہا کرتے تھے کہ اللہ میں زمزم اس نیت سے پیتا ہوں کہ مجھے میدان محشر کی پیاس سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح سے آپ بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. زمزم کی دعا آتی ہے آپ میں سے کسی کو؟ پڑھ دیجئے جس کو آتی ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا رزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو بہرحال اگر زمزم گھر میں ہے تو یہ بھی ایک دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. پھر اس کے بعد سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. رات میں نیند سے بیدار ہو کر اور رات میں کروٹ لیتے ہوئے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ اگر حسن المسلم دیکھیں نا, اردو کا جو اس کا ایڈیشن ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کروٹوں کے وقت کی دعائیں. بہت پیاری دعائیں ہیں. اور اس وقت واقعی اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو آپ کی رات اچھی گزرے گی. پھر اسی طرح آیت کریمے کے ذریعے بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر دیکھیے کہ مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر دعا قبول ہوتی ہے. مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہے, اگر مل گیا تو بھی خیر اور اگر نہیں ملا تو بھی خیر ہے. چلیے اب ذرا آیتوں کے ساتھ چلے. دعاؤں کا کانسیپٹ کچھ کلیئر ہوا؟ کوئی نئی بات پتہ چلی ہے اس چھوٹے سے سیشن سے؟ الحمدللہ. اس میں تو وہ ہیں ہی نہیں صاحب کے لاکھ کے اور آدھے آدھے گھنٹے کی دعائیں اور فلاں بڑا رلاتے ہیں. اچھا جب کوئی کہتا ہے نا فلاں بڑی اچھی دعا کراتا ہے, مجھے ڈر لگنے لگتا ہے. ریاکاری ہو سکتی ہے, منع ہے. بہت زیادہ را لگا کے گانے اور شعروں پہ شعر آئے ہیں جو یہ وہ. کبھی کبھی خود بات کرتے ہوئے آنسو نکل جائیں, اٹس اوکے. کبھی کبھی بات کرتے ہوئے رب سے جڑتا جائے ایک سے دو, اٹس اوکے. وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے, نیچرل ہے. لیکن ایک لفاظی کا بازار گرم کرنا اور لوگوں کو رلانا, لائٹیں بند کر دیں, اے سی بند کر دیں, رونا تو خود ہی آ رہا ہے. تو آرٹیفیشلی دعائیں نہیں کرانی چاہیے. اللہ نوز دی بیس, یعنی مجھے تو یہ مزاج نہیں دکھا. بہرحال چلیے پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے, اب ہم پارے کے ساتھ چلیں گے. امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء, سورۃ نمل آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے. جیسا کہ شروع میں آپ کو تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ پہلے شروع میں سوال ہے, مکہ والے اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں تھے لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس میں شریک کرتے تھے. تو اسی ضمن میں آیت 62 میں کیا آتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرے جب کہ وہ اس کو پکارے اور اس کی برائی کو دور کرے اور تم کو خلیفہ بنا دے زمین میں. الہم مع اللہ, یہ جملہ آپ کو بار بار دکھے گا اس رکوع میں. الہم مع اللہ, کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ یہ ایسے ہی جیسے ایک ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کو کہتی ہے تیری کوئی اور ماں میرے سوا؟ ہے کوئی تجھ سے میرے سے زیادہ پیار کرنے والا؟ ہے کوئی جس کو تیرا خیال ہے؟ تو یہ بڑا محبت کا انداز ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ. لیکن بل اکثرہم لا یعلمون. تو آیت 62 میں دیکھیے کہ اللہ نے مضطر یعنی مجبور, ضروری اصل میں لفظ اس میں تو یہ ایکسٹرا ہوتی ہے, یعنی مجبور کی بات کی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کی بد دعا سے بہت ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ مظلوم بعض دفعہ مشرک بھی ہوتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اس پارے کو پورا کرنے سے پہلے اپنے دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نے ہر غیر سے بے نیاز ہو جانا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں, لوگوں کا مال اللہ کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کی محبتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس بندے کو کچھ بھی چاہیے سیدھا جا کر اللہ کے در کو کھٹکھٹائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ اللہ نے آپ کی پکار کو سن لیا. اب دیکھیے، گھر کا ایک مین کنٹرول ہوتا ہے نا، بجلی کا مین میٹر ہوتا ہے، آپ اس کو جا کے بند کرتے ہیں تو سارے سوئچ بند ہو جاتے ہیں نا. جب بجلی جاتی ہے تو یہ سارے سوئچ کیوں نہیں کام کرتے؟ پیچھے سے بند ہو گئی بجلی، ایسی ہے نا. اور پیچھے سے کھول دیں تو سب کھل جاتا ہے نا. لوگ جو آپ کے میرے ارد گرد ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے سوئچ ہیں، ہمیں دکھتے تو یہی ہیں، ہم کہتے ہیں سوئچ آن کیا بجلی آ گئی. بھائی سوئچ کا کیا کام ہے؟ یہ تو پلاسٹک کا بٹن ہے، اندر ساری رو چل رہی ہے نا بجلی کی، تاریں لگی ہیں، کنیکشن ہے، پیچھے سے وابڈا اسٹیشن سے ہک ڈاپ ہے، یہ ہے وہ ہے. بالکل اسی طرح رکھے مین پاور اسٹریم، جس کو آپ کہتے ہیں جہاں سے سپلائی ہو رہی ہے وہاں پہنچ جائے، تو چیزیں ویسے بھی خالص ملتی ہیں اور آسانی سے مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بندوں کا محتاج نہ کرے، کبھی ہمیں دین اور دنیا کی کسی ضرورت کے لیے کسی بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس کے آگے شرمسار نہ ہونا پڑے. اگلی آیات میں ایک ایک لفظ توحید کو واضح کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، جتنا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. اصل میں آج بات کیا ہے کہ اللہ سے تعلق میں کمی ہے، اللہ دینا چاہتا ہے، ہمیں لینا ہی نہیں آتا. کتنے لوگ اس سے متفق ہیں؟ سچی بات ہے، بات بڑی ہو جاتی ہے، بندہ منہ سے نکالتے ڈرتا ہے. مانگیے کیا مانگنا ہے، اللہ دے گا، لیکن ہمیں یہ مانی نہیں ہے. ابھی اللہ کے ساتھ تعلق کے یہ درجے نہیں. دیکھیں ہم بھی تو نہیں نا اس کی ہر ایک مانتے ہیں. جب آپ سورۃ بقرہ میں یہ موضوع پڑھ کر آئے، آیت 186 ہے غالباً، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس میں دو لفظ بتانا چاہ رہی ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری مانو، میں بھی تمہاری مانوں گا. ہم کہتے ہیں ہم نہ اللہ کی مانیں اور اللہ ہماری ہر بات پہ کہ جی بندے بالکل جی ٹھیک ہے، اوکے اوکے، یہ بھی ہو گیا، میں نہیں ہوں، میں یہ بھی ہو گیا. اچھا اللہ کہتا ہے اٹھو تم بھی کچھ کر لو، نماز پڑھ لو. نہیں، اللہ میرے سے تو نہیں پڑھی جاتی. تو شرط ہے کیا آپ اللہ کی مان، یہ تو دنیا میں بھی چلتا ہے. آپ ایک کسی کی مانتے، اگلا آپ کی دو بات ہے، آپ دو مانیں گے وہ چار مانے گا. تو اللہ کی بھی مانیے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آیت 73 کو دیکھیے گا، شکر کی بات ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور بے شک اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. تو شکر کی بات ہوئی تو ہم اللہ کا فضل دیکھیں تو آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں. صرف اپنی لسٹ بنا کر دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا ہوا ہے. ہم عموماً لسٹ کس چیز کی بناتے ہیں؟ کیا کچھ نہیں ہے. لسٹ پہ چار چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن جو ملا ہوا ہے وہ 400 کی لسٹ ہے، اس کو نہیں گن پاتے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر رحم کیا، اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس کرتی ہوں، غیروں سے بے نیاز ہو چکی ہوں. اگر آپ لسٹ بنا کر دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات بندے کو اتنا کچھ دیتی ہے، اس کے باوجود بندے اس کی قدر کم ہی کرتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہم پر کتنا زیادہ ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آیت 76 سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوتا ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. اور اس قصے میں جو بنیادی طور پہ بات کی گئی ہے، وہ بھی اسی بات کی گئی ہے کہ یہ قرآن حقیقت میں پچھلی کتابوں کی کنٹینویشن ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون، کہ یعنی یہ قرآن ان کے پچھلے اختلافات کے پول کھول دیتا ہے. اگلی آیات میں کتنی بڑی حقیقت بیان کی گئی. آپ دیکھیے کہ نبیوں کے دل بڑے رقیق ہوتے تھے، وہ اس تڑپ کے ساتھ دنیا میں جیتے تھے کہ کوئی بندہ بھی جہنم کا ایندھن نہ بنے، اور جس نے خود آگ دیکھی ہو اس کو یقین بھی تو آ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بعض دفعہ جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیتے تھے، پھر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ لوگو، اگر تمہیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور اپنی بیویوں سے لذت لینا چھوڑ دو، और तुम जंगलों में चले जाओ। जब हम भी इसी जहन्नुम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें या दूसरों को रोकें, तो दूसरे भी इसको बड़ी लापरवाही से लेते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह पर भरोसा रखो। देखिए, जब दुनिया बहुत हसीन हो जाती है ना, लग्जरियस हो जाती है, तो आखरत की जन्नत की ज़्यादा तड़प नहीं रहती। बस आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास नरम कुर्सी भी है, टेबल भी है, एसी भी चल रहा है, आपके सामने ठंडा पानी रखा है, कौन इधर से उठना चाहेगा? आपसे कहते आइए ज़रा इधर से उठिए, चलिए वो पिछले कमरे में चलते हैं, उस हॉल में। आप कहेंगे पता नहीं उधर एसी चल रहा है कि नहीं, पता नहीं उधर मुझे कुर्सी मिलेगी कि नहीं। आप कहेंगे नहीं, मैं इधर ठीक हूँ। लेकिन बिलफर्ज़ इधर गर्मी भी हो, कुछ जगह भी नहीं है, पसीने भी आ रहे हैं, जो भी आपकी अबतर हालत है, कोई आपसे कहे कि उठिए इधर से उस कमरे में चलते हैं, तो मेरे लिए पूरी बात ख़त्म होने से पहले हम उठ जाएंगे। जब हमने अपनी दुनिया की ज़िंदगी इतनी लग्जरियस बना ली, हमारा यहाँ से उठ के जाने को नहीं दिल करता। और एक गलत फहमी लगती है इसके साथ ही कि जिसने यहाँ दे दिया वो वहाँ भी दे देगा। कोई शर्त नहीं, यहाँ इम्तिहान है, वहाँ इनाम होगा। इम्तिहान के लिए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इनाम के लिए पहले से कुछ करने की बहरहाल ज़रूरत होगी। फिर आयत 82 की रोशनी में देखें तो हदीस से पता चलता है कि क़ुर्बे क़यामत की जो बड़ी अलामत हैं, जिनको अलामत कुबरा कहते हैं, इसमें ज़मीन से जानवर का निकलना भी है। वो लोगों को जाकर नसीहत करेगा। फरमाया ये वो वक्त होगा जब लोग एक दूसरे को बुराई से रोकना छोड़ देंगे। अल्लाह ताला कादिर है इस बात पर कि वो जानवरों से काम करवा ले। सूरत नमल में देखा कि हुदहुद के ज़रिए मलका सबा को पैगाम पहुंच गया। अल्लाह ने अबाबीलों के ज़रिए से अपने घर को बचा लिया। अगर हम कुछ करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए करेंगे, अल्लाह ताला को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या सीखा? कि अल्लाह के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, और अमल बिर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के बग़ैर सच्ची खुशियाँ मिल नहीं सकती। ये सिर्फ़ एक ख्वाब हो सकता है कि हम खुश रहें, घर बंगला बच्चे औलाद मिल जाएगी, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी जब तक अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए आयत 83 से आगे क़यामत का मंज़र है। हम वहाँ अपने आप को महसूस करें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को गिरोहों में लेकर आएगा, अल्लाह ताला सब को इकट्ठा करेगा। जो लोग दुनिया में जिस मेयार के थे, वहाँ सब को एक जगह इकट्ठा करेगा। मिसाल के तौर पर सूद खोरों का एक गिरोह हो जाएगा, जानियों का एक होगा, शराबियों का एक गिरोह होगा। हम अपने आप को चेक करें, आज तो अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दे डाल रखे हैं, नेक और बद मिले जुले हैं। पता नहीं किसकी नेकी की वजह से हम भी अजाब से बचे हुए हैं। लेकिन क़यामत के दिन जब सब लोग अलग हो जाएंगे और फिर अल्लाह ताला पूछेगा, तुमने मेरी आयात को झुठला दिया, यानी ना तुमने पता किया ना सोचा, बस सुनी सुनाई बातों पर मेरी आयात को झुठला दिया। आज भी देखें, जब इल्म नहीं होता, इस वक्त लोग बात को ज़्यादा झुठला रहे होते हैं। जब इल्म आता है तो इंसान को अपनी कम इल्मी का इतना ख़तरा लग जाता है कि किसी बात में हाँ और ना करते हुए डर लगता है। ऐसे ही है ना, देखिए नए कपड़े में अकड़ होती है ना, इस्तेमाल शुदा कपड़ा नरम होता है। नया इल्म या थोड़ा इल्म बंदे में अकड़ पैदा करता है, गर्दन ही नहीं हिलती, किसी से सलाम भी नहीं कर सकते। लेकिन जब इल्म जज्ब होता है ना, हज़म होता है, तो फिर आपको अपनी कमाईगी का एहसास उतना ज़्यादा होने लगता है। तो इल्म वाला कौन है? जिसको अपनी कम इल्मी का यकीन होता है। हम सब के लिए यहाँ अपने मुहासवे का नुक्ता है कि क्या वाकई में अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाती तो नहीं हूँ, या जब अल्लाह के कलाम की बातें मेरे सामने कोई रखता है तो मैं इसको ऐसे ही बेतवज्जही से तो नहीं सुनती। आयत 86 में दिन और रात का तस्करा है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला की निशानियों की बात है। अब अलम यरवन्ना जालना लैल लियस्कुनू फीहि वन्नहारा मुबसिरा इन नफी ज़ालिकल आयातिल लिकौमी युमिनून, क्या नहीं उन्होंने देखा कि बेशक हमने रात को सुकून के लिए बनाया और दिन को देखने वाला, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है उस कौम के लिए जो ईमान लाती है। देखिए, रात और दिन का तذکرہ एक साथ आता है, और इसके साथ ये बात आती है कि इसमें निशानियां हैं। तो ज़रा सा गौर कीजिए कि रात और दिन में क्या निशानी है। नंबर एक, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक ठंडी है तो एक गर्म। ऐसे ही है ना, दिन अमूमन गर्म होता है, रात ठंडी होती है, लेकिन कितनी हम आहंगी है, इसको नोट करें। हम आहंगी क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग। आप कैसे कहते हैं मैं नहीं रह सकती इस मर्द के साथ? मेरे से बहुत डिफरेंट है, ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम मी. भाई अगर सेम आप जैसा हो गया तो फिर तो आप एक घंटा नहीं रह सकेंगी. शुक्र कीजिए वो आपसे फ़र्क है. ज़िंदगी का एक असूल याद रखिए, रात गर्म है या ठंडी, दिन गर्म है या ठंडे, कभी आपने आज तक शिकवा नहीं सुना होगा रात से सुबह का और सुबह से रात का. गर्मियाँ भी आती हैं, सर्दियाँ भी आती हैं, जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी भी आ ही जाएगी कुछ अरसे बाद. आज अगर खिजां है तो कल बहार आएगी. ज़िंदगी में जिस मर्द के साथ आपका ताल्लुक़ अल्लाह एक दफ़ा बांध दे, पक्का बांध लीजिए, कि अगर गलत जोड़ नहीं जुड़ा, यानी शिर्क बिदत और दीन और बेदीनी को एक साइड पे कर दे, आदात के इख्तलाफ पे कभी घर नहीं तोड़ने. ऐसे लोग बाद में खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारेंगे और अपने हाथों को कच्चा चबाएंगे कि ये हमने क्या किया. ये याद रख लीजिए, ज़िंदगी का असूल है. आदतें आपकी भाई से मिलती हैं, आपकी बहन से आपकी आदतें मिलती हैं, माजरत के साथ आपकी अपनी माँ से आदतें मिलती हैं. तो जाइए इन सबको भी छोड़िए, फिर लीजिए भाइयों से तलाक, छोड़िए माओ को बापों को, इसी में रहना है. वो कहते ना कि इतनों के बीच में इख्तलाफ़ राय के साथ रहो, सिर्फ तुम्हें अपनी हदें पता होनी चाहिए. ये सबक है रात दिन से, और अल्लाह इसी पे गौर व फिक्र करवाना सिखा रहे हैं. फिर और क्या पता चलता है कि इंसान को बाज़ दफ़ा अपने से मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है. इसके इर्द गिर्द वाले हो सकता है कि इसकी बात समझने को तैयार ना हो, लेकिन इंसान इख्तलाफ पैदा किए बग़ैर इस काम को अच्छे तरीके से करे. मिसाल है कि हम सब मिलके यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम सब का मिजाज एक ही हो, ये कभी होगा ही नहीं. हो गया तो ये काम चलेगा नहीं. ये कोर्स हम ऑफ़र कर ही नहीं सकते अगर सारे अंसारुल्लाह की मिजाज सोच तबीयत एक हो. तो लिहाजा कई चीज़ों में अल्लाह ने खैर रखी होती है. बस आप ये समझ लीजिए कि ये बंदा मेरे से ज़रा सा मुख्तलिफ है. मैं पूरी कोशिश करती हूँ इसको समझने की, और अपने आप को उसके एज पे ले आइए. जब आप अगले कैंट से देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें वैसी समझ आ जाएंगी. फिर अगला एक और ज़रा सा नुक्ता गौर का देखिए, कि रात को गम की अलामत और सुबह को खुशी की अलामत समझें. यानी दिन रोशनी है ना, तो रात गम है, तो ज़िंदगी में ये तो होगा, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन के लंबे. पारे का मौजू चूँकि दुआ है, तो बाज़ दफ़ा दुआ करते वक्त ऐसा लगता है मेरी तो अब गमों की रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी. तो इस आयत को याद कीजिए कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इसकी सुबह ज़रूर होती है. ला तकना तो मेरा रहमतिल्ला, हर गम की एक इंतहा है. या तो अल्लाह गम दूर कर देता है, या गमों की इस दुनिया से उठा कर ले जाता है. सिर्फ फिक्र क्या करनी चाहिए कि आखरत कैसी होगी. वो कहते हैं ना कि मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे. तो एक लम्हे को सोचिए, अगर हमारी कब्र के बाद की ज़िंदगी ख़राब हुई तो क्या बनेगा, सोचिए तो सही ज़रा. लोग कहते हैं मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई. चलिए हो गई, कितनी लंबी थी, अच्छी भी होती. आपको क्या पता है कि आपने एक साल बाद मर ही जाना है. तो अगर बहुत अच्छी भी होती तो ज़्यादा अफसोस होना था मरने का. दुखों में तो मरेंगे, चले जान छूट गई, ये सोचिए आगे क्या होगा. इसी के कुछ मनाजिर अगली आयात में हैं. और ज़रा सोचें, अपने आप को ज़रा खड़ा करें उस जगह कि जब पहाड़ हिलने लगेंगे मेरा क्या हाल होगा. आज दुनिया में अल्लाह की तरफ पुकारने वाली अजान होती है, और इसके बाद हम नहीं उठते, सोते रहते हैं. तो आप सोचिए ना कि जब क़यामत का सूर फूका जाएगा, इस वक्त तो हम नहीं सोते रहेंगे. उस वक्त कोई कहेगा मुझे सोना है, लाइट बंद करो, चले जाओ, नहीं. फिर आज हम दुनिया में अल्लाह की बात को सुनकर इस तरह अनजाना कर देते हैं जैसे ये बात हमें कही ही नहीं गई. आयत 87 से 90 तक क़यामत के मनाजिर हैं. व यौम युनफ़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ध, और सूर में फूका जाएगा और बेहोश हो जाएंगे या घबरा जाएंगे वो सब जो आसमानों और ज़मीन में है, हाँ मगर जिसको अल्लाह चाहे. इसको पढ़ते वक्त दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें उस दिन के हॉल से बचाना. ऐ अल्लाह दुनिया में हमें नेकियों के मौके हासिल करने और इन्हें इस्तेमाल करने की तौफीक दे, ताकि कल क़्यामत के दिन हमारे पलड़े भारी हो जाएँ, और अल्लाह ताला क़यामत की रुसवाइयों से महफूज रखना. इसी तरह आयत 91 में एक नुक्ता है नोट करने का, उसको भी नोट कर लीजिएगा. इन्नमा उमिरतु नअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शैइन. नुक्ता क्या है कि इबादत किसकी करनी है. इस शहर मक्का के मालिक की इबादत की जाए। आज बास लोग यानी जो बुतों को पूजते हैं और ख़ुद को हिंदू कहते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि मुसलमान भी तो एक पत्थरों के घर की पूजा करते हैं। हम बुतों की पूजा करते हैं पत्थर के बने हुए, ये घर की करते हैं। तो इसका जवाब ले लीजिए, रब हाजल बैत अन आबुदा रब्बा। ठीक है, यानी आसान जुमला बोल देती हूँ कि आप मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते, हम काबा को सजदा नहीं करते, काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह को सजदा करते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे हम सूरह बलद में, फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत। ठीक है, तो जवाब क्या है कि हम खाना काबा को सजदा नहीं करते, बल्कि इबादत करते वक्त मत सोचिए कि हम काबा को सजदा कर रहे हैं या मक्का की तरफ मुंह कर रहे हैं। मुंह तो अल्लाह की तरफ से है किबला, और काबा तो एक वहदत है यूनिवर्सलिटी के लिए कि सब मुसलमान एक ही तरफ मुंह कर लें ताकि सब एक तरफ हों। और अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के हुक्म को मानो और कुरान पढ़ा करो। तो ख़ुद से सवाल कीजिए, क्या हम मुसलमान हैं? क्योंकि अल्लाह ताला पूछते हैं ना, अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है, वह उमिर तो अनकून अमिनल मुस्लिमीन, तो अल्लाह हम सबको भी मुस्लिम बना दे। अपने सारे नाम छोड़ दीजिए, साब के, लाख के, फिर के, जमातें, गिरोह, हर जकड़बंदी उतार के अपने आप को हुसम्मा कुमुल मुस्लिमीन पे ले आइए। 90% मसले ही ख़त्म हो जाएंगे हमारी उम्मत के आज के दौर के। इसके बाद सूरत आखिर में है, आयत 93 देख लीजिए, आखिरी आयत है सूरत की, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि सयुरीकुम आयातिहि फ़तारिफ़ूनहा वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। आयत 93 में अल्लाह ताला की निशानियों की बात हुई कि अल्लाह ताला निशानियाँ दिखाता है। क्या निशानियाँ दिखाता है? हकीकत यह है कि जो बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ लेता है, वो हर लम्हे अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ देखता है। जहाँ लफ्ज़ इलाह के और कई मानी हैं, इसका एक मानी ये भी है कि वो ज़ात जो हैरान कर दे। हकीकत यह कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो आपको हैरान करती है। आप एक दफ़ा अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ कर देखें, रूठे रब को मना कर देखें, इसके साथ क़ुर्ब पैदा करें, आप दिल की गहराई से ये महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला आपके करीब है, और फिर इस तरीके से अल्लाह ताला आपकी पुकार भी सुनेगा। आप अपने आप को चेक करें, मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ क्या है? मुझे अपनी माँ का ज़्यादा मान है या अल्लाह का? यानी मुराद यह कि मुश्किल आती है तो माँ को याद करती हूँ या अल्लाह को? मैं अल्लाह के भरोसे पर ज़्यादा काम कर रही हूँ या मैं इंसानों के भरोसे पर ज़्यादा काम करती हूँ? दुआ तो ऐसा लगता है कि कनेक्शन है, जैसे बिजली की तारें होती हैं, तो जब तक दोनों तारें अपनी जगह पर नहीं जाती, इस वक्त तक बिजली पास नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह हमारी दुआएं सुनने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हम भी सुने। इसको हाईलाइट करें, हम अल्लाह की बात सुनते हैं तो अल्लाह हमारी दुआएँ सुनता है। ये तो नहीं हो सकता कि अल्लाह हमें नमाज की तरफ पुकारे और हम कहें मैं अभी फारिग नहीं हूँ, अल्लाह नेकी की दावत दे और आप गैर हाजिर हों, हर जगह गैर हाजिर, और हम चाहते हैं कि जब हाथ उठाएं और कि अल्लाह ये चाहिए तो अल्लाह कहे हाजिर। यानी अल्लाह तो सुने और हम ना सुने उसकी। अल्लाह तो हर बंदे का ये चाहता है कि इसकी दुआएं कबूल हों, लेकिन ये तो सोचे कि हम भी अल्लाह की सुने। जो अल्लाह की जितनी सुनेगा अल्लाह उसकी उतनी ही सुनेगा। तो क्या पता चला? किस मनवाने के लिए मानना पड़ता है। कहते हैं कि पहले मानो फिर मनवाओ, ये ज़ूल है इधर भी। अल्लाह हमें मानने वाला बना दे।